وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، من گزشتہ کل سیور اربع کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ چار سیریں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب ہیں. ایک سیر اللہ، دوسری سیر فی اللہ، تیسری سیر من اللہ، اور چوتھی سیر فی الاشیاء. اب اس کی تفصیل یوں سمجھیں کہ جب انسان کا دل جاری ہوا تو اصل روح جو تھی وہ مضغہ سے نکلی اور اپنی اصل کی طرف گئی. روح کا مضغہ سے نکل کے اپنے اصل کی طرف، عالم امر کی طرف جانا، یہ سیر اللہ کہلاتی ہے. سیر اللہ کہلاتی ہے. پھر جب وہ اپنی اصل کے اندر پہنچ جائے تو اس کو سیر فی اللہ کہتے. پھر وہ وہاں سے واپس لوٹتی ہے تو اس کو سیر من اللہ کہتے ہیں. اور جب وہ واپس قلب کے اندر لوٹ آتی ہے اس کو سیر فی الاشیاء کہتے ہیں. بزرگوں نے اس کو آسان کرنے کے لیے دوسرے نام دے دیے. سیر اللہ کا نام رکھا عروج، سیر اللہ کا نام رکھا عروج، اور سیر فی اللہ کا نام رکھا فنا. فنا اور سیر من اللہ کا نام رکھا نزول، واپس آنا، نزول. اور سیر فی الاشیاء کا نام رکھا بقا. فنا اور بقا، عروج اور نزول، تو یہ چار سیر ہیں. چار کیفیتیں ہیں جو ہر لطیفہ کو پیش آتی ہیں. ہمارے پانچ لطائف ہیں تو پانچوں لطائف کو یہ سیریں پیش آتی ہیں تب وہ منور ہوتے ہیں. ہر ہر لطیفے کی اپنی فنا بقا ہے تو پانچوں کو یہ پیش آئے گی چیز. چونکہ لطیفہ واپس لوٹتا ہے عالم امر کی طرف تو عالم امر منور جگہ ہے، وہاں نور ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آندھی چل رہی ہو تو باہر سے کوئی بندہ آئے تو اس کے پورے چہرے کے اوپر ایک مٹی کی تہ ہوتی ہے. یہ لطیفہ جب اوپر پہنچتا ہے اس عالم امر میں تو نور کی وجہ سے اس کے اوپر نور کی تہ چڑھ جاتی ہے. جیسے برتن کو کلی کروایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک تہ چڑھ جاتی ہے، اسی طرح لطیفے کے اوپر ایک نور کی تہ آ جاتی ہے. آج کل تو گولڈ پلیٹنگ کا زمانہ ہے اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ لطیفہ اوپر جاتا ہے تو اس کی وہاں گولڈ پلیٹنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ وہاں سے لوٹتا ہے تو یہ سونا بن کے رہتا ہے کیونکہ سونے کی تہ جو چڑھ گئی تھی اس کے اوپر. اس فنا کی وجہ سے اس کا رجوع اللہ اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اس دنیا میں آ جاتا ہے مگر اللہ کا تعلق اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو عروج، سیر اللہ، نزول سیر من اللہ، فنا سیر فی اللہ، اور بقا سیر فی الاشیاء. یہ چار الفاظ کلیئر ہو گئے اچھی طرح. اب ذرا یہ بات سمجھ لیں कि हर लतीफे की मुरब्बी तजल्लियात अलग है। पांच लतीफे हैं, कल्ब रूह सिर खफ़ी अख़फ़ा, और पांच ही मुरब्बी तजल्लियात हैं। चुनाचे सबसे पहले नंबर आता है कल्ब का। तो कल्ब की तजल्लियात जो मुरब्बी हैं उनका नाम है तजल्लियात अफ़ाल, तजल्लियात अफ़ालिया। चुनाचे तजल्लियात अफ़ालिया में जब कल्ब को रूज हासिल होता है तो अल्लाह ताला की जो सिफत है ना फ़ालुल लिमा युरीद, वो उसको हासिल हो जाता है, समझ में आ जाती है। तो वो फ़ाइल हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पहचान लेता है। तो खुद ब खुद असबाब से नजर हट गई और मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर नजर देखो, उसका ये यकीन बन जाता है अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं चीजों के बगैर और चीजें कुछ नहीं कर सकती। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की दावत चलाई, ये तसव्वुफ के मैदान का पहला सबक लतीफे कल्ब की कैफियत, इस जिक्र सलूक के रास्ते की ये पहले दर्जे की कैफियत है। तजल्लियात अफ़ालिया का मुराकबा करने वाला बंदा वो अल्लाह ताला को फ़ाइले हकीकी विजदानी तौर पर मान लेता है, दलीलों की जरूरत नहीं रहती, उसके अंदर एक यकीन आ जाता है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात को देखें, अल्लाह ताला पूछते हैं वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम आपके दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने जवाब दिया है या सौल, ये असा है। फिर उसके फायदे भी बता दिए, अतवक्कउ अलैहा वाहुशु बिहा ला गनमी वलियतिहा महारिब उखरा, मेरे लिए और भी बड़े फायदे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे फायदे की चीज है, अल्लाह ताला ने फरमाया अलकिहा या मूसा, इसको डाल दीजिए जमीन। जब डाला फैजा है या हय्यतुन तसा, तो दौड़ने वाला अजदहा सांप बन गया। फौजसा फी नफ्सिही खीफतन मूसा, मुझसे हम घबरा गए। कुलना ला तखफ, हमने फरमाया डरो नहीं, खुजहा वला तखफ, सनुईदुहा सीरत हल उला, हम पहले वाली सीरत जब हाथ लगाया तो फिर आसा बन गया। तो कुरान मजीद में जो ये वाकया बताया गया तो सिर्फ ये नहीं था कि भाई एक खिलाफ आदत चीज पेश आ गई, नहीं, एक सबक देना मकसूद था। क्या मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, जिस लाठी के आप फायदे गिनवा रहे थे, हमारे हुक्म से जमीन पर डाला, वो ऐसी नुकसान देने वाली चीज बनी कि आप घबराई गए, और जिस चीज के नुकसान से आप घबरा रहे थे, हमारे हुक्म से हाथ लगाया तो फिर फायदे वाली चीज बन गई। तो सबक दिया प्रैक्टिकली कि चीजों में नफा और नुकसान डालना ये हमारी शान है, हम चाहते हैं तो नफा डाल देते हैं, हम चाहते हैं तो नुकसान। चीजें बर्तन है, बर्तन में पानी डालना दूध डालना ये मालिक का काम होता है, गर्म डालना ठंडा डालना ये तो मालिक का काम है, चाहें तो बर्फ वाला पानी डाल के दे दें, चाहें तो गर्म चाय डाल के दे दें। इसी तरह अल्लाह ताला जब चाहते हैं जिस चीज में चाहते हैं नफा रख देते हैं, जब चाहते हैं नुकसान रख देते हैं। तो हमें चीजों के पीछे नहीं जाना, असबाब से नजर हटानी है और मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर नजर जमानी है। یہ سبق یہاں دیا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سبق سمجھ لیا. پھر اس کے بعد ان کی نظر چیزوں پہ نہیں رہی، ظاہر پہ نہیں رہی، اوپر ہی رہی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں. جادوگر کہتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسا، رسیاں ڈالی جو یوں محسوس ہوا کہ سانپ ہیں جو چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یوں فیل ہوا. اب آپ ذرا اپنی عقل سے سوچیں، چاروں طرف سانپ ہوں، ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو وہ اگر ظاہر کی نظر سے سوچے تو ظاہر کی عقل تو کہے گی کہ بھائی ڈنڈا مضبوطی سے پکڑو اور جو تمہارے پاس سانپ آئے اس سانپ کے سر پہ مارو، تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہو سکتی ہے. مگر ہاتھ سے ڈنڈا نہ چھوڑنا، یہ امید کی آخری کرن. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نیچے ڈال دو. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہی تو ہے، تم یہ بھی پھینک بیٹھے تو ہاتھ میں کیا راگ، خالی ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے وہ کیا جو اللہ نے کہا. جب عصا زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب سانپوں کو کھا لیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، تو انہوں نے نظر کو نہیں مانا، خبر ہم لوگوں کی ہے، اسباب کی زندگی، نظر کی زندگی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، تم خبر کی زندگی، ہمارے وعدوں پہ یقین کرو، یہ خبر کی زندگی ہے کہ اللہ کے وعدے سچے. ظاہر آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ غلط دیکھ رہی ہے. انسان کے سینکڑوں سال کے تجربے غلط ہو جاتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے کھڑے ہیں، آگے پانی کا دریا، پیچھے فرعون کی فوج کا دریا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکو، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، اب دھر لیے گئے، اب سینڈوچ بن گئے. قال اللہ، فرمایا ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، ایک یقین بھری آواز اٹھی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور رہنمائی کرے گا. یہ یقین کہلاتا ہے، یہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. ظاہر کو نہیں دیکھا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، آگے جا نہیں سکتے کہ دریا ہے اور پیچھے جا نہیں سکتے کہ انسانوں کا دریا. اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے، عقل کہے گی جناب تمہارے ہاتھ میں تلواریں تو ہیں نہیں، ایک ڈنڈا ہی تو ہے، تو بس پھر ہمت کر لو، فرعون آئے تو بس ایک دو ڈنڈے لگا دینا سر پہ اس کے. اور اللہ تعالی سے پوچھو کہ یا اللہ مجھے کرنا کیا چاہیے، تو حکم آتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ ڈنڈا مارو. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا؟ مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے وعدے کو دیکھا، اور جب پانی پہ ڈنڈا مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیئے اور بنی اسرائیل کو اس سے نکال دی، فرعون کو ورق کر دیا. تو ہوا وہ جو اللہ کا وعدہ تھا، جو ظاہر کی آنکھ نے دیکھا وہ ٹھیک نہیں دیکھا، मुसलिफना वादी टी में कौम आ गई, पीने को पानी चाहिए, जीने को पानी चाहिए। अब अकल से पूछे क्या करें, अकल कहती है जनाब एक डंडा ही तो है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुआं खोदें, गड़ा खोदें, पानी निकल आएगा, मगर डंडा टूटने ना पाए। अगर डंडा टूट गया तो उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी। ये तो कहती है अकल। तो भी अकल कहती है कि डंडा टूटने ना पाए। और अल्लाह ताला से पूछा या अल्लाह क्या करूं, फरमाया अनिद्रिब असाकल हजर, डंडा मारो पत्थर के ऊपर। अकल कहती है डंडा टूट जाएगा और ये सहारा भी खत्म हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा नहीं परवाह की, उन्होंने वो किया जो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे को ये यकीन मेरे साथ हासिल हो कि जो होना है अल्लाह की मर्जी से होना है। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, चीजों के बगैर चीजें कुछ नहीं कर सकती अल्लाह के बगैर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे ऐसा मारा, अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए। तो इन वाकयात में एक बात समझाई गई कि मेरे बंदो इन वाद अल्लाह हक, जो अल्लाह के वादे हैं वो सच्चे होते हैं। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, अक्सर नहीं जानते इस बात को, समझते नहीं है। तो जब तजल्लियात अफाल में लतीफे को सैर हासिल हो जाती है तो इंसान जौकी और विजदानी तौर पर अल्लाह को फाइल हकीकी मानता है। हर काम अल्लाह की मंशा से होता है, उसके बगैर कोई पत्ता गिर नहीं सकता। अब इसके चार बड़े फायदे हैं। इस कैफियत के हासिल होने के कितने फायदे हैं? चार बड़े फायदे। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला के वादों पर बंदे का यकीन कामिल हो जाता है। मिसाल बायजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को मेरी अयाल बना दे और सारी जमीन को तामेगी बना दे और आसमान से एक कतरा भी पानी का ना गिरे, मुझे फिर भी यकीन है अल्लाह अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचा कर रहे। ये है अल्लाह के वादे पे कि सारी मखलूक को मेरी अयाल बना दो, मेरे घर के मेरे डिपेंडेंट। इंसान को फिक्र होती है ना खाएंगे कहां से, और फरमाते हैं कि जमीन तांबे की बना दो कि फसल नहीं उगती उसमें, और आसमान से एक कतरा भी पानी ना गिरे, तो फरमाते हैं मुझे फिर भी यकीन है अल्लाह अपने बंदों को रिस्क पहुंचा कर रहे। राबिया बसरिया अल्लाह की नेक बंदी मेहमान आ गए, इशा का वक्त भी हो गया, अब खाना भी मेहमानों को खिलाना है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खादमा को कहा कि देखो कौन है। वो गई, उसने देखा और कहती है जी के कोई बंदा है, खाना लाया। अच्छा रोटियां गिनो, उसने कहा जी 9 रोटियां। उसने कहा ये इसको वापस कर दो और कहो कि ये हमारा नहीं किसी और का। फिर 15 मिनट आधा घंटा गुजरा, फिर दरवाजा खटखटा, भाई कौन, ये कोई खाना लेके आया। रोटियां गिनो कितनी है, 9 है, हमारा नहीं, वापस बैठ। फिर आधे पौने घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब तो मेहमान भी मुंतजर थे, भाई इतनी देर हो गई तो कुछ तो खाना मिलेगा, और खाने का वक्त था, भूख भी सबको लगी हुई थी। तो फिर बांदी को भेजा, उसने कहा जी खाना लाया है तो कितनी रोटियां, जी 9 रोटियां, हमारा खाना नहीं। तो बांदी ने कहा जनाब वो 3 चक्कर लगा चुका, मेहमान बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं इस खाने को कबूल कर लेती, मेहमानों को खाना मिल जाएगा। उन्होंने कहा असल वजह यह है कि आज सुबह मेरे पास एक फकीर आया था और मेरे पास एक ही रोटी थी, वो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दी, और अल्लाह का वादा है मन जा अबिल हसनत फलहू अशर अमसाल, तो मैंने एक दी थी मुझे 10 मिलनी चाहिए, तुम कहती हो 9 है। जब ये कहा तो बांदी ने हाथ जोड़े कि जी वो लाया तो 10 ही था, 1 मैंने अपने लिए रख ली थी। ये है अल्लाह के वादों पर भरोसा। तो सलूक में फिनायत हासिल होने पर सालिक को इतना कामिल यकीन हो जाता है। अब समझ में बात आती है कि हजरत मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों ये उसूल लिखवाया था कि दारुल उलूम के लिए मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया कबूल नहीं किया जाए, उनका यकीन बना हुआ था। उस यकीन के भरोसे उनका नहीं, तो फिर नजर हट जाएगी अल्लाह से और असबाब पे नजर लग जाएगी, तो कमजोरी है, ये तो धोखा है। सहाबा की भी नजर रहती थी इसी के ऊपर। खालिद बिन वलीद लानो का जब खूब फतुहात हो रही है, डंका बज रहा है उनकी फतुहात का, उमर लानो ने एक पैगाम भेजा कि मैं इस बंदे को भेज रहा हूं आपके आपके साथ, आपकी बजाय ये अमीर लश्कर होंगे, आपके पास चॉइस है, आम सिपाही बन के लड़ने हैं तो वहीं रहें, नहीं तो मेरे पास आ जाए मदीने में। वो चिट मिली तो खालिद बिन वलीद ने फौरन कहा कि हां मैं एक आम सिपाही बन के अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं वापस क्यों जाऊं। खैर बाद में किसी ने खालिद बिन वलीद से पूछा कि हजरत कोई माकूल वजह भी नहीं थी, और जब इस तरह आपकी फतूहात हो रही थी तो एक सिंपल ऑर्डर पर सिपा सलार से हटके आम फौजी बन के लड़ने लग गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसलिए नहीं पड़ा कि जब सिपा सलार बन के लड़ रहा था, जिस जात की रजा उस वक्त मुझे मतलूब थी जब सिपाही बन के लड़ा, तब भी रजा उसी की मतलूब थी, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं, अल्लाह को राजी करना है ना, सिपा सलार बन के करूं या आम सिपाही बन के। किसी ने उमर लानों से पूछा कि हजरत आपने उम्मत को इतने बड़े जर्नैल से महरूम क्यों किया, उसकी कायदाना सलाहियतों से डिप्राइव कर दिया। तो उमर लानों ने जवाब दिया हां मैंने उनको जर्नैल से तो महरूम कर दिया, उनका ईमान बचा लिया। कैसे? फरमाने लगे कि जहां जा रहे थे खालिद बिन वलीद लानो तो पता हो रही थी, तो लोगों के दिल में ये बात बैठने लग गई थी कि खालिद बिन वलीद की वजह से पता हो रही है, तो नजर असबाब पर जा रही थी, मैंने उनको माजूल कर दिया कि फतह अब भी होगी और नजर मखलूक पे जाने की बजाय खालिक की मदद के ऊपर। इसको मतलब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के जहन में भी यही रहती थी कि अल्लाह पे नजर रहे। तो हमारे अकाबरीन इस सलूक के सफर में सैर इल्लाह के जरिए से ऐसा यकीन पा लेते थे। तो 4 फायदों में से पहला फायदा क्या कि अल्लाह के वादों पे फिर कामिल यकीन आ जाता है। हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास जब खर्चा कम हो जाता था ना, तो वालदा साहबा फरमाती थी कि वो जो बाकी होता था वो भी जल्दी से खर्च कर देते थे, जो थोड़ा सा बचा होता था वो भी जल्दी से खर्च कर देते थे। तो मैं पूछती थी कि लोग तो बचा के रखते हैं कि थोड़ा रह गया सोच समझ के खर्च करो, आप जल्दी से लगा देते हैं। फरमाया ये जेब खाली होगी तो और आएगा ना, जेब खाली होगी तो और आएगा ना। इतनी आलीशान मस्जिद बनाई और मोहल्ले वालों ने उसका नाम रखा बेचंदा मस्जिद। बेचंदा मस्जिद इसलिए कि चंदा ही नहीं करते थे, ऐसा भरोसा था अल्लाह के खजाने। तो हमारे अकाबिर को अल्लाह के वादों पर खजानों पर पूरा यकीन होता था, तो नजर किस पर रहती थी? आज इसके ना होने की वजह से नजरें जो है वो मालदारों पर आ गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई सर भी खुजाए तो पीर साहब सोचते हैं शायद सर से ये कुछ पैसे निकाल के हदिया दे देगा। एक साहब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, उस जमाने में जब उस्ताद का मुशायरा 2 रुपए और 3 रुपए होता था, उसने हजरत को डाक के जरिए 1,00,000 रुपया हदिया भेजा। 1,00,000 रुपया महीने की तनख्वाह 2 रुपए और हदिया भेजा 1,00,000। हजरत की आदत थी कि अगर कोई एहसान जितला के हदिया देता था तो कबूल नहीं करते थे। हाजतमंद और जरूरतमंद समझ के हदिया देता था तो भी कबूल नहीं करते थे। हाँ, एहसान मान के हदिया देता था कि जी मेरे ऊपर एहसान करें, मेरा को फिर ले लेते थे। अब इसने 1,00,000 रुपया हदिया भेजा और उसमें लिख दिया, जिससे पता चलता था कि भाई उसने लिखा है जी मैंने देखा आपको जरूरत है तो मैं हदिया भेज रहा हूं। हजरत ने वो 1,00,000 रुपया वापस कर दिया। उसको तो तवक्को ही नहीं थी, तो उसने फिर खत लिखा कि हजरत मैंने तो जरूरियात को देख के ये हदिया दिया और आपको ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना हदिया दे। तो हजरत ने उस खत के साथ जवाब लिखा कि आपको भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो 1,00,000 रुपए को लात मार दे, आपको भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा। क्यों ऐसी बातें होती थी? अल्लाह के वादों पे भरोसा होता था। वो समझते थे कि अल्लाह ही के खजानों से मिलना है और अल्लाह ने देना है। तो 4 फायदों में से पहला फायदा क्या? अल्लाह के वादों पे काम है। अगर बताएं ऐसी ईमान की कैफियत हो जाए तो जिंदगी का मजा ना आ जाए। दूसरी बात कि जब ये यकीन बैठ गया कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर किसी चीज के मिलने से इंसान को हद से ज्यादा खुशी नहीं होती और किसी चीज के चले जाने से इंसान को हद से ज्यादा। कुरान मजीद की एक आयत लकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आता, इस पे कामिल अमल हो जाता है बंदे का। शेख अब्दुल्ला जिरानी रहमतुल्लाह अलैह का तिजारती जहाज चलते थे, इतला आई कि हजरत वो आपका एक तिजारती जहाज सामान लेके जो आया था वो डूब गया। हजरत ने सुन के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले हैरान कि डूबने पे भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। कुछ देर के बाद एक आदमी आया, हजरत वो जो जहाज था बस वो डूबते डूबते किनारे पे लग गया, बच गया। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजलिस में बैठने वाले हैं ना कि डूबने की इत्तला पे भी अल्हम्दुलिल्लाह और बचने की इत्तला पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने पूछा कि हजरत क्या मसला? फरमाया कि जब मुझे उसके डूबने की इत्तला मिली थी तो मैंने अपने दिल में झांक के देखा, मुझे दिल में उस पे कोई अफसोस नहीं था नुकसान के ऊपर, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बचने की इत्तला मिली, मैंने फिर दिल में झांक के देखा तो मुझे इसके ऊपर कोई खुशी नहीं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीज नसीब हो जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हाथ से चली जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह वालों की कैफियत हो जाती है, इस पर अमल नसीब हो जाता है। तीसरी चीज कि जब हर काम अल्लाह की तरफ से होता देखता है बंदा, तो मखलूक की मदहा और जम ये बराबर है। कोई तारीफें करता रहे तो इंसान फूलता नहीं, कोई मुज़म्मत करता रहे तो इंसान डिप्रेस नहीं होता। इसलिए कि वो तारीफ करने वाले को ये नहीं समझता कि ये कर रहा है, वो सोचता है अल्लाह इससे करवा रहे हैं। और जो आके मुज़म्मत करता है तो वो ये नहीं समझते कि ये मेरी मुज़म्मत कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है। तो एक बुजुर्ग थे, उनकी कोई तारीफ करता तो वो कहते मन मीश नासिम, कोई मुज़म्मत करता कहता मन मीश नासिम। उसने कहा जी क्या माना आपका? उनका कि बोल तो ये रहा होता है, मैं कहता हूं अल्लाह मैं पहचानता हूं कि कौन ये करवा रहा है, मन मीश नासिम मैं पहचानता हूं। कि असल में तो अल्लाह तारीफ करवा रहा है या अल्लाह उसकी जुबान है। तो ऐसे बंदे के लिए फिर दीन भी चलना बहुत आसान, कि दीन के मामले में इंसानों की मदह और जम उसकी नजर में बराबर हो जाते। तीसरा फायदा नहीं चौथा फायदा कि इंसान इज्जत और जिल्लत फिर किसके हाथ में देखता है? तो ये जो हर वक्त होता है वो जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और उसकी वजह से सुन्नत को छोड़ देना, हुक्म खुदा को छोड़ देना, दीन को छोड़ देना, लोग क्या कहेंगे। तो नजर लोगों से हटके लोगों के परवरदिगार पे, वो समझता है कि इज्जत मिलेगी तो भी अल्लाह के हुक्म से और जिल्लत मिलेगी तो भी अल्लाह के हुक्म से। इज्जत और जिल्लत तो वो देने वाला है, नफा और नुकसान देने वाला अल्लाह। जब तजल्लियात अफ़ाल की सैर नसीब हो जाती है तो इसका क्या माना कि इंसान की नजर अल्लाह पे पक्की हो जाती है कि फाइल हकीकी अल्लाह की ज़ात। तो मखलूक से नजर हट जाती है, अल्लाह ताला की नजर तरफ नजर जम जाती है। तो फिर ऐसा बंदा शैतान के हाथे नहीं आता, शैतान से महफूज हो जाता है। कैसे महफूज हो जाता है? हजरत मुजद्दद सानी अफजल ने एक हिकायत लिखी है मुतलबात में, फरमाते हैं कि शैतान बदबख्त एक मरतबा जा रहा था, हड्डियां निकली हुई थी, फंदे उठाए हुए थे, तो किसी ने देखा तो उसने पूछा मलून ये तेरा क्या हाल है, हड्डियां निकली हुई हैं और फंदे लेके जा रहे हो। कहने लगा कि हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे फंदों की जरूरत पड़ती है, मेरे लिए कौन था, कहने तेरे लिए तो फंदे की जरूरत नहीं, तो वैसे ही है, तेरे जैसे को तुम्हें वैसे ही है। फंदों की जरूरत बाद लोगों के लिए पड़ती है। उसने कहा तो कमजोर क्यों? कहने लगा क्या बताऊं कि कुछ लोग हैं जिन पे ये मेरे फंदे असर ही नहीं करते, उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया। उसने कहा वो कौन है? कहते आप मुझे दिखाता हूं। तो फरमाते हैं कि शैतान ने गधे की शक्ल अपनाई, है ही गधा, तो उसने गधे की शक्ल अपनाई और एक बुजुर्ग थे बूढ़े मियां जो कपड़ा बना रहे थे, तो इसमें लंबे लंबे धागे होते हैं, खड्डी से कपड़ा बनाते हैं, तो वो गधे की शक्ल में आया और दौड़ता हुआ आया और आके उसने जो दुलत्ती लगाई सारे धागे तोड़ दिए। अब वो धागे तोड़ के भाग गया। वो बड़े मियां उठे और बड़े सुकून से एक एक धागे को बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट, और फिर अपना काम शुरू कर दिया। ये कुछ देर के बाद दोबारा आया, फिर से धागे तोड़े। बड़े मियां न उन्होंने गुस्से का इजहार किया, न उन्होंने गाली दी, न उन्होंने कोई डंडा उठाया शैतान को मारने के लिए। फिर बिस्मिल्ला पढ़ा, धागे जोड़े। शैतान ने कहा कि देखो ऐसे बंदे हैं कि मैंने जो कुछ किया इस बंदे को इससे भी गुस्सा नहीं आया, ये गुस्से में आएगा तो मेरे चक्कर में फंसेगा ना, ये वो लोग हैं जिन पे मेरे दाव असर नहीं करते। तो इमाम रब्बानी मुजद्दद शाह ने अपना ये वाकया लिख के फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग जिनका ईमान समझने वाले इतना कामिल ईमान समझते हैं, इन्होंने तसव्वुफ के पहले सबक में फिना हासिल की हुई थी, यानी लतीफे कल्ब में तजल्लियात अफाल में इनको फिना हासिल हो गई थी, इसलिए उनका ईमान ऐसा था कि वो समझते थे कि धागे इसने नहीं तोड़े, अल्लाह ने तोड़वाया है, जब अल्लाह ने तोड़वाए हैं तो फिर बेजारी किस बात की, फिर गुस्सा किस बात का। इतनी पुरसुकून हो जाती है जिंदगी कि ये जो हम हरकतें करते हैं ना, छोटी छोटी बात पे उलझ पड़े, इसने वो कर दिया, ये वो कर देगा, ये ऐसे है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह की जात पे नजर रहती है। तो तजल्लियात अफ़आल में सैर हासिल होने से इंसान को ऐसा ईमान मिलता है जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं। एक तो वादों पे पक्का यकीन, दूसरा किसी चीज के मिलने से इंसान को हद से ज्यादा खुशी नहीं होती और जाया होने से डिप्रेशन नहीं होती। दीन के मामले में मदह और जम बराबर हो जाती है और इज्जत जिल्लत मखलूक की बजाय वो खालिक की तरफ देखता। खूबसूरत ईमान है जो पहले कदम पे हासिल होता है। फिर दूसरा सबक है, उसको कहते हैं लतीफ़े रूह। उसकी सैर तजल्लियात सिफात सबूतिया में होती है और उसकी कैफियतें फिर बंदे को मिलती हैं। फिर लतीफे सिर की सैर शयूनाते जातिया में होती है तो उसकी सिफात मिलती हैं। फिर लतीफे खफी की सैर सिफाते सलबिया में होती हैं तो उसकी सिफात मिलती हैं। और लतीफे अख्फा की सैर शान जामे उसमें होती है, फिर इंसान को उसकी सिफात मिलती है। आप सोचिए जब पहले कदम पे ईमान का ये हाल था तो फिर पांचवें पे ईमान का क्या हाल होता, कितना खूबसूरत ईमान हासिल होगा फिर बंदे। ये वाकई हिम्मत करके हासिल करने वाली चीज है। तो दो तरह की फिना इंसान को हासिल होती है, एक को कहते हैं फिनाए कल्ब और एक को कहते हैं फिनाए नफ्स। एक को कहते हैं फिनाए कल्ब और एक को कहते हैं फिनाए नफ्स। समझ लें कि इसमें भी क्या फर्क है। बंदे की कैफियत एक तो ये है कि गुनाह की तरफ मिलान तो है लेकिन उसने अपने आप को गुनाह से रोका है, अपने आप को गुनाह से रोका हुआ है कि नहीं गुनाह करना। तबीयत मायल होती है मगर गैर महरम की तरफ नहीं आंख उठा के देखना। तबीयत में सुस्ती है मगर नमाज कदा नहीं होने देनी। तो जब ये कैफियत हो कि मिलान तो हो मगर कंट्रोल इतना हो जाए कि इंसान उस मिलान की रौ में बह जाने की बजाय हर हाल में शरीयत के ऊपर अमल करने वाला बन जाए, इसको फिनाए कल्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिनाए कल्ब कहते हैं। और बुजुर्गों के इस्तलाह में इसको विलायत सुबरा कहते हैं। ये क्या है? विलायत सुबरा। और अगर बंदी की कैफियत ऐसी हो कि गुनाह की तरफ मिलान ही हो ना हो बल्कि कराहत हो, गुनाह की तरफ कराहत। अब आप कहेंगे कराहत कैसे हो सकती है? अच्छा भाई बताएं, आम लोगों को तो मौसीकी इतनी अच्छी लगती है कि कहते हैं ये रूह की गिज़ा है, लेकिन आप हजरात बताइए मस्जिद के इस माहौल में अगर किसी के फोन की घंटी बजेगी तो आपके दिल में खुशी होगी या कराहत होगी? कराहत होगी। क्यों नहीं बंद किया इसको? ये मौसीकी मस्जिद में। तो जिस तरह हमारी कैफियत मौसीकी के बारे में मस्जिद में होती है, अल्लाह वालों की यही कैफियत हर गुनाह के बारे में। तबाई तौर पर हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं हमें सूअर से बहुत नफरत होती है। पैदाइशी तौर पर मां बाप ने सिखाया है, एक अच्छी चीज है। ऐसे भी लोग हैं कि जो उसका गोश्त मजे से खाते हैं, और अगर किसी मुसलमान को भूख लगी हुई हो और कोई कह दे जी कि इस बर्तन में पहले सूअर खाया तो वो बंदा उस हलाल गिजा को भी छोड़ देगा कि इसमें सूअर का गोश्त नहीं था, उसकी तबीयत में मिलान नहीं होगा। तो जैसे सूअर के गोश्त के बारे में हम लोगों की तबीयत के अंदर एक कराहत अल्लाह ने डाल दी है, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके दिलों में हर गुनाह के बारे में ऐसी कराहत आती, तबीयत ही नहीं करती गुनाह करती, तबीयत कराहत करती है। बंदा तो मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाती है, जिनसे शरीयत कराहत करती है बंदे की तबीयत भी कराहत करने लग जाती है। अगर ये कैफियत हासिल है तो इसको कहते हैं फिनाए नफ्स। ये फिनाए नफ्स का मुकाम है और बुजुर्गों के अल्फाज में इसको विलायत कुबरा कहते हैं। तो गुनाह की कमिलान हो मगर इंसान शरीयत पर जमा रहे, ये विलायत सुबरा। और गुनाह की तरफ मिलान की बजाय गुनाह की कराहत दिल में आ जाए तो इसको कहते हैं विलायत कुबरा। वो फिनाए कल्ब है और ये फिनाए नफ्स। इसलिए इमाम रब्बानी मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिनाए कल्ब हासिल होने के बावजूद इरादा बाकी रहता है, फिनाए नफ्स में आके बंदे का इरादा ही खत्म हो जाता है, गुनाह का इरादा ही नहीं करता। کیا خوبصورت ایمان ہوگا کہ انسان گناہ کے بارے میں سوچے ہی نہ، اس کو فنائے نفس دیتے ہیں. تو ہمیں محنت کر کے لطیفہ قلب کی بھی فنا بقا حاصل کرنی ہے، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا، پانچوں لطائف. جب پانچوں میں فنا بقا نصیب ہو جائے گی تو پھر انسان کا ایمان بہت زیادہ منور ہو جائے. یہ ولایت کے مقامات کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں. اس سے اوپر پھر کمالات شروع ہوتے ہیں. جو کمالات نبوت ہیں وہ اس سے اوپر شروع ہوتے ہیں. یہ تو پرائمری پاس کرتا ہے بندہ. اب آپ سوچیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں کیسا ایمان بنانے کے لیے راستہ کھول کے سمجھا دیا اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں ذکر کے بارے میں، ہاں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا. یہ گمان چھوڑ دیں کہ صرف ثواب ملے گا، ذکر میں بیٹھنے سے خدا ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا شروع کریں. اور خدا کو پانا یہ زندگی کا مقصد ہے. تو ہر لطیفہ اپنے لطیفہ سے نکلتا ہے اور اوپر اپنے اصل تک پہنچتا ہے. اس اوپر جانے کو کہتے ہیں سیر اللہ. جب اپنی اصل میں پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ. جب واپس آتا ہے تو کہتے ہیں سیر من اللہ. جب اپنے مقام پہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی الاشیاء. تو یہ چار سیریں جب مکمل ہو جائیں تو انسان کی یوں سمجھیں کہ سلوک مکمل ہوتا ہے. اس کا علم جو ہے اور معرفت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی معرفت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ پہلے سالک کو تجلیات افعال کا علم ملتا ہے، پھر صفات کا علم ملتا ہے، پھر شیونات کا علم ملتا ہے، اور آخیر کے اوپر سالک کو پھر ذات کا علم ملتا ہے. تو اصل تو علم ہی ہے نا. یہ جو سیر ہے نا یہ کوئی نقل مکانی نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. یہ اصل میں سیر علمی ہے، علمی سیر ہے. یہ علمی طور پر انسان منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ انتقال علمی ہے کہ پہلے وہ علمی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، یقین کی، جو بعد میں حاصل ہو جاتی ہے. یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی؟
کیوں جی.
اب ایک بات اور بھی سن لیجیے کہ جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا نزول کامل ہوگا. جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا، اگر عروج ناقص رہا تو نزول بھی ناقص رہے گا. آج کل کے زمانے میں سالکین کو فنا بقا ملتی ہے مگر وقت کم دینے کی وجہ سے اس کی کیفیت بہت گہری نہیں ہوتی. ان کے اوپر انٹینسٹی میں کمی ہوتی ہے. سالک محسوس کرتا ہے کہ ایک وقت آ گیا، پورا دن اللہ کے وعدوں پہ بڑا بھروسہ، بڑا اللہ کا قرب، عجیب کیفیت ہوتی ہے. سالک کہتا ہے جی آج بڑی عجیب کیفیت تھی. اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اس وقت فنا نصیب ہوئی تھی. تو آج کل کی فنا تو تھوڑے ٹائم کے لیے اور اس کی انٹینسٹی بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. پہلے وقتوں میں جب سچ کا زمانہ تھا مجاہدے تھے تو اس وقت فنا کا وقت بھی زیادہ ہوتا تھا اور کیفیت بھی بہت گہری ہوتی تھی. لیکن جو محنت کرے تو آج کے دور میں بھی اس کو فنا وقع کامل مل سکتی ہے. اب ایک سوال بات مکمل ہونے سے پہلے، اگر آپ امت کی تاریخ کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی کرامات کو گنیں تو مشکل سے 1000 صفحہ، مشکل سے 1000 صفحہ ٹوٹل صحابہ کی کرامتیں، جو 1,25,000 تھے. ٹوٹل کرام نے کتنے ورقوں میں آ جائیں گی؟ 1000 صفحوں میں. اور اولیاء کی کرامتیں گننا شروع کریں تو ماشاءاللہ کروڑوں صفحے، ختم ہی نہیں ہوتی. یہ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں کروڑوں صفحوں میں نہیں سمٹتی اور صحابہ کی کرامتیں صرف 1000 صفحے؟ اتنی تھوڑی کرامت ہے. اس کے پیچھے ایک راز ہے، بتانا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ نیند بھی تو آ رہی ہے نا. چھوڑ دیں، سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں، کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، عادت کو توڑ دینا، عادت کو پھاڑ دینا، عادت کے خلاف کام ہونا، اس کو خرق عادت کہتے ہیں. کرامت بھی کہہ دیتے ہیں. کرامت صادر ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں سے کرامت صادر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور قریب ہو جائیں. یہ معجزے کی نسبت ہے، یوں سمجھیں کہ جیسے انبیاء کو معجزے ملے تو اس کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بعد اولیاء کو کرامتیں دے دیتا ہے، ان کی کرامتیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. چنانچہ تاتاری شہزادہ مسلمان ہوا تھا کہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا لفظ کہا تھا اور زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی، تو وہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا. تو یہ کرامتیں کئی مرتبہ صادر ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے ہدایت کا کام لیتا ہے، ان کے ذریعے سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ کرامتیں انسان کے نقص کی دلیل ہوتی ہیں، انسان کے نقص کی دلیل ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ جب لطیفہ سیر من اللہ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سیر فی الاشیاء کامل نہیں ملتی، وہ اوپر رہ جاتا ہے عالم اسباب سے عالم امر میں. تو جب سب اوپر رہ جائے گا تو پھر اس بندے کی نظر کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی، اسباب کے اوپر نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عالم اسباب میں بھی پہنچا ہی نہیں. تو جب نظر اللہ کی ذات پر رہے گی تو ایسے بندے سے بہت زیادہ خرق عادت کے واقعات ہوں گے، مگر یہ اس کی سیر کے ادھورا ہونے کی علامت ہوگی. صحابہ کرام کی سیر کامل تھی، اتنی کامل سیر تھی کہ ان کو دیکھ کے ظاہر کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے یا کوئی بہت خاص آدمی. اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ باطن میں اتنی بلندی اور ظاہر میں اتنی سمپل زندگی کہ کافر آ کے یہی تو مصیبت کا رونا روتے تھے کہ مال حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان کو لگتا تھا یہ تو بہت ہی عام سی زندگی ہے، یہ کمال ہے. جب سیر کامل ہوتی ہے تو پھر شیخ کی ظاہر کی زندگی بالکل عام نظر آتی ہے، بہت انوکھی چیزیں نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز انوکھی ہوتی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے سوا نظر نہیں آتا. اسی لیے کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی میں تو 9 سال رہا، میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. 9 سال میں سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا نہیں دیکھا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس کی سیر مکمل ہوگی تو اس کا نزول مکمل ہوگا اور وہ اسباب کا محتاج بن کے رہے گا، اسباب کے مطابق زندگی گزارے گا نا. کیونکہ اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے نا کہ اسباب کے مطابق رہو. تو کمال یہ ہے کہ نظر تو اللہ کی ذات پر ہو لیکن انسان ظاہر میں اسباب کے اوپر عمل کر رہا. جیسے میدان احد میں صحابہ نے ایک ایک زرہ باندھی تھی اور نبی علیہ السلام نے 2 زرے. اب عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی کیوں بھئی، اسباب کے اوپر عمل تھا نا، کہ اللہ کی منشا ہے اسباب کے مطابق رہو، ہم اللہ کی منشا کو پورا کر رہے ہیں. اتنا کامل عمل ہوتا ہے ان کا، اور انسان من سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ظاہر میں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمد، اس لیے کہ محبوب کی ظاہر کی ایسی زندگی تھی کہ جیسے بالکل صحابہ کی زندگی ہوتی. تو کمال کیا ہے کہ ظاہر اتنا نیچے آ جائے کہ لوگوں کو عام بندہ نظر آئے، حقیقت میں اس عام بندے کے اندر اس کی خصوصیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کمال ہے. اور اگر کسی کا لطیفہ اوپر رہ جائے تو وہ تو ہر طرف اللہ کی طرف توجہ، اسباب کی طرف دیکھنے نہیں، تو یہاں بھی کرامت تو وہاں بھی کرامت، جگہ جگہ کرامتیں صادر ہوتی رہیں گی. اس لیے صحابہ کرام کا نزول کامل تھا اور ان سے کرامتیں تھوڑی صادر ہوئیں، جو ہوئیں وہ اللہ نے دین کا کام لینے کے لیے صادر کروائیں. اولیاء اللہ کا نزول چونکہ ناقص ہوتا ہے، لہذا اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر. خرق عادت ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اہل اللہ اپنی کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے حیض کے خون کے کپڑے کو مردوں سے چھپاتی ہے، اس طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب ہے. تو یہاں سے بزرگوں نے ایک سبق دیا، الاستقامت فوق الکرام، الاستقامت فوق الکرام. شریعت پر استقامت تمام کرامتوں سے بڑی کرامت. یہاں تک بھی بات سمجھ آگئی؟ اب ایک مثال سے ذرا بات اور کلیئر ہو جائے تاکہ ہم مجلس ختم کریں. شیخ کا نام ہے حسن بصری رحمت اللہ، مرید کا نام ہے حبیب اجمی رحمت اللہ. شیخ کا نزول کامل اور مرید کا نزول ناقص. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ دیکھا دریا کے کنارے حسن بصری کھڑے ہیں، سلام دعا बातचीत कैम छो हारू छो अब थोड़ी देर बातें होती नहीं, तो उसके बाद हबीब अजमी कहने लगा हजरत मुझे जरा जाना है। तो हबीब अजमी ने दरिया के पानी पर पांव रखा और चलता हुआ उसने दरिया को कबूल कर लिया और हसन बसरी खड़े। तो नाकिस मुरीद करामत दिखा के चला गया और कामिल शेख कश्ती के इंतजार में। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पहुंचे तो देखा कि हबीब अजमी का वो जो सदरी होती है ऊपर लेने वाली वो पड़ी हुई है, वो खुदा का बंदा रख के चला गया। खड़े हो गए भाई कोई चोरी कर लेगा, ये कहां चला गया। थोड़ी देर बाद हबीब अजमी आ गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हबीब अजमी ऐसे ही ये छोड़ के चला गया था? नहीं हजरत, मैं उस जात के सपुर्द करके गया था जिसने आपको हिफाजत पे खड़ा किया। अब जाहिर क्या लगता है कि हबीब अजमी बड़ा वली है, हालांकि हबीब अजमी नाकिस है, वो खिलाफ असबाब कर रहा है और हसन बसरी कामिल है कि असबाब के मुताबिक उनकी जिंदगी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पीछे पुलिस लग गई, वो चाहते थे कि इनको हम कोई ओहदा दें हुकूमती काम में, पर हमारे मशायख इससे घबराते थे। वो कहते थे कि ज़ुबहा बगैर सिक्की कबूल नहीं करते थे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह भागे, अल्लाह की शान आगे वो हबीब अजमी का कमरा जो था ना बना हुआ वो था। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह आए, हबीब अजमी किसी को मत बताना कि मैं कहां हूं, और कमरे में छुप गए। अब थोड़ी देर गुजरी तो पुलिस वाले भी आ गए। हबीब अजमी हसन बसरी को देखा है, कहते हां कहां देखे कि कमरे में। अब पुलिस वाले कमरे में गए तो उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा और हसन बसरी सुन रहे हैं, मगर अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए, पुलिस वाले नहीं देख सके उनको। थोड़ी देर के बाद वो चले गए। जब चले गए तो हसन बसरी रहमतुल्लाह बाहर निकले, हबीब अजमी तुझे कहा नहीं था किसी को मत बताना? बता दिया था तो कौन तो उन्होंने देख लिया था। तो जाहिर देखने में लगता है कि हबीब अजमी का ईमान कामिल है और मशायख फरमाते हैं कि हसन बसरी कामिल शेख हैं और हबीब अजमी उनका अभी नाकिस मुरीद है, ये रास्ते का राही है, मुसाफिर है, मंजिल पे नहीं पहुंचा। तो जब नुजूल कामिल हो जाता है तो पहचान क्या कि जाहिर की जिंदगी बिल्कुल सादा हो जाती है, कोई देख के अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई ये कोई बहुत खास शख्स। इसलिए अल्लाह ताला से फिना भी कामिल मांगनी चाहिए और बका भी, और करामात का तलबगार नहीं रहना चाहिए, उसकी बजाय इस्तेकामत का तलबगार होना चाहिए कि अल्लाह हमें करामत की बजाय इस्तेकामत वाली जिंदगी नसीब। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت www.dasquran.com